और ईस्ट साइड के आगे। एलन कालमेन एक रेकॉर्ड निर्माता था। उसने ईस्ट विलेज अंदर में भारत से आए स्वामी और उनके द्वारा प्रसार किए जा रहे मंत्र के विषय में पढ़ा था। जब उसने मुख पृष्ठ पर हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़ा तो उसे बड़ा आकर्षण हुआ। लेख में यह विचार प्रकट किया गया था कि मंत्र का जप करने से कोई भी बहुत ऊंचे उठ सकते हैं या ऊंची भावना प्राप्त कर सकता है। लेख में स्वामी जी का सेकंड एवेन्यू का पता दिया हुआ था। अतः नवंबर में एक रात को एलन अपनी पत्नी के साथ स्टोर फ्रंट आ गया। एलन कमरे के पिछले भाग में करीब 30 जोड़े जूते थे। लोग आगे के हिस्से बैठे थे, जूते पीछे रखे थे। हमने अपने जूते उतारे और बैठ गए। हर एक व्यक्ति बैठा था और बहुत शांत था। सामने मध्य में एक कुर्सी रखी थी और हर एक कुर्सी पर दृष्टि गड़ाए था। तब भी कमरे में हमें किसी शक्ति का अनुभव हो रहा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और हर एक कुर्सी को निहार रहा था। दूसरी वस्तु जो हमने देखी वह थी स्वामी जी का प्रथम दर्शन। वे अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गए और आगे ही ऊर्जा की प्रचंड बाढ़ सी आ गई। स्वामी जी ने कीर्तन आरंभ किया। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। स्वामी जी के सामने एक छोटी ढोलक थी जिसे वे बजा रहे थे। उससे बड़ी मर्म भेदी और उन्मेषकारी ध्वनि निकल रही थी। एक भक्त कागज पर लिखा मंत्र हाथ में लिए था जिससे हर कोई उसका अनुसरण कर सके। उसके बाद भक्त खड़े हो गए और गोलाकार में नाचने लगे। पद गतियों के साथ यह एक विशेष नृत्य था। स्वामी जी कमरे की चारों तरफ देख रहे थे और जब उनकी नजर किसी पर जाती तो वे मुस्कुराते प्रतीति होते, मानो उसे नाचने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हो। अगले दिन एलन ने प्रभुपाद को फोन करके प्रस्ताव किया कि वह उनके कीर्तन का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, किंतु फोन लेने वाला ब्रह्मानंद था और उसने एलन को उसी शाम को प्रभुपाद से मिलने के लिए बुलाया। अतः एलन और उसकी पत्नी ईस्ट विलेज पुनः गए, जो उनके लिए पड़ोस जैसा था। जहां ये सारी घटनाएं घट रही थी, यदि किसी को कोई उत्तेजना चाहिए थी तो वह ईस्ट विलेज दादा था। जब वे स्वामी जी के कमरे में प्रविष्ट हुए तो वे टाइपराइटर पर बैठे टंकण कर रहे थे। एलन ने रिकॉर्ड बनाने के अपने विचार का जो ही उल्लेख किया, प्रभुपाद ने दिलचस्पी दिखाई। वे बोले, हाँ, हमें रिकॉर्ड जरूर बनाना चाहिए। यदि इससे हरे कृष्ण कीर्तन के वितरण में सहायता मिले तो यह हमारा कर्तव्य है। उन्होंने दो सप्ताह बाद दिसंबर में टाइम्स स्क्वायर के निकट अडेल्फी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड बनाने का निश्चय किया। एलन की पत्नी इस बात से बहुत प्रभावित हुई। प्रभुपाद कितने उत्साहपूर्व रिकॉर्ड बनाने की बात को समझ कर हो गए। अपनी योजना के बारे में उनमें कितनी अधिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा थी। रिकॉर्डिंग की तिथि की पिछली रात थी। एक लड़का दो सिरों वाला एक बड़ा भारतीय ढोल लिए हुए शाम को कीर्तन के लिए स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुआ। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अतिथि अपने साथ प्रायः ढोल, बांसुरी, अन्य वाद्य यंत्र लाते ही थे। तब भी इस बार स्वामी जी विशेष रूप से उधर आकृष्ट हुए। लड़का बैठ गया और बजाने की तैयारी में लगा कि प्रभुपाद ने संकेत किया कि वह ढोलक उनके पास ले आए। लड़का हिला नहीं, वह ढोल स्वयं बजाना चाहता था, किंतु ब्रह्मानंद उसके पास गया और बोला, स्वामी जी ढोल बजाना चाहते हैं। लड़का मान गया। ब्रह्मानंद स्वामी ही ढोल बजाने लगे और उनके हाथ ढोल पर जैसे नृत्य कर रहे हो। हर एक विस्मय विमुग्ध था कि स्वामी जी यह सब जानते हैं। मैंने अभी तक केवल बोंगो ड्रम देखा था, इसलिए मैं समझता था कि वही उपयुक्त भारतीय ड्रम है। लेकिन जब यह दो सिरों वाला ड्रम बजाने कहां से न जाने कहां से प्रकट हुआ और स्वामी जी उसे कुशल संगीतज्ञ की तरह बजाने लगे, तो उससे बोंगो ड्रम की अपेक्षा भावनामृत की शक्ति 100 गुना अधिक हो गई। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने लड़के से पूछा कि क्या आप अगली रात में होने वाला रिकॉर्डिंग के लिए वह ढोल उधार ले सकते हैं। लड़का पहले अनिश्चित प्रतीत हुआ, लेकिन भक्तों ने वादा किया कि वे अगले दिन ढोल से वापस पहुंचा देंगे, तो वह राजी हो गया और बोला कि ढोल लेकर वह अगले दिन शाम को आएंगे। जब लड़का बगल में ढोल बजाए उस रात स्टोर फ्रंट से चला गया, तो भक्तों ने सोचा कि वे उस लड़के या उसके ढोल को अब कभी नहीं देखेंगे। किंतु दूसरे दिन स्वामी जी के स्टूडियो के लिए प्रस्थान के कुछ घंटे पूर्व ही वह लड़का ढोल लिए हुए आ गया। दिसंबर की ठंडी रात थी। स्वामी जी अपनी रोज की केसरिया धोती, ट्वीड का ओवरकोट और भूरे रंग का जूतों का जोड़ा, जिसने काफी पहले उनके सफेद नोकदार रबर के जोड़े का स्थान ले लिया था, वो जोड़ा धारण किए हुए लगभग अपने 15 शिष्यों और अनेक वाघ यंत्रों के साथ रूपन की गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए चल पड़े। ब्रह्मानंद, हमारा रिकॉर्डिंग तुरंत शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमसे पहले का दल वहां उपस्थित था, अतः हम लोग टहलने के लिए टाइम स्क्वायर में चले गए। हम स्वामी जी के साथ वहां खड़े होकर चमकते हुए प्रकाश और एक इंद्रिय तृप्ति की तमाम वस्तुओं को देख रहे थे। तभी एक स्त्री स्वामी जी के पास आई और कहने लगी, ओ आप कहां से आए हैं? उसकी आवाज बहुत तेज और अधिकार युक्त थी। स्वामी जी बोले, मैं भारत से आया एक सन्यासी हूँ। उसने कहा, ओह कितना अच्छा है, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। उसके बाद उसने स्वामी जी से हाथ मिलाया और चली गई। स्टूडियो में भक्तों को नियमित संगीतज्ञों की टोली के रूप में लिया गया। एक संगीतज्ञ ने उनसे पूछा कि उनकी टोली का नाम क्या था। हरेकृष्ण हंसकर बोला, हरे कृष्ण सेंटर, यानी कि हरे कृष्ण संकीर्तनकारी। बेशक अधिक भक्त संगीतज्ञ नहीं थे, तब भी तंबूरा, बड़ा हारमोनियम गिन्सबर्ग द्वारा उधार दिया हुआ और ताल देने वाले अन्य यंत्र आदि जो वे लाए थे, ऐसे थे जिन्हें वे कीर्तन में महीनों से बजाते आ रहे थे। अतः जब वे स्टूडियो में प्रविष्ट हुए तो उन्हें विश्वास था कि वे अपना खुद का संगीत उत्पन्न कर सकते हैं। वे अपने स्वामी जी का केवल अनुसरण करते थे। स्वामी जी के थे कि कोई वाघ यंत्र कैसे बजाया जाता है और शिष्य जानते थे कि उनका अनुसरण कैसे किया जाता है। वे अन्य संगीतज्ञों की टोली की तरह नहीं थे। उनका संगीत केवल संगीत नहीं था, वह कीर्तन, ध्यान और पूजा भी था। स्टूडियो के बीच में प्रभुपाद एक चटाई पर बैठ गए। इस बीच इंजीनियरों ने माइक्रोफोन की व्यवस्था की और प्रत्येक भक्त को उस के व्याघ यंत्र के अनुसार विशेष स्थान पर बैठाया। उन्होंने केवल 2 जोड़े करताल मांगे और लय यास्तियों के जोड़ों का अनुमोदन किया, किंतु वे चाहते थे कि कई भक्त तालियां बजाए। रूपानुक का अपना वाघ था, पीतल की भारतीय घंटियों का एक जोड़ा जिनके लोलक निकाल दिए गए थे। इंजीनियर ने जब उन्हें देखा तो वह रूपानुक के पास बढ़ाया और कहा, मुझे चाहिए। रूपानुग ने उनको बजाया और वे अनुमोदित कर दी गई। रविंद्र स्वरूप को हारमोनियम पर गुंजन का निरंतर सुर निकालना था, इसलिए वह अपने माइक्रोफोन के पास अलग बैठा और कीर्तनानंद के तंबूरे के लिए भी एक अलग माइक्रोफोन था। जब इंजीनियर सब तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने भक्तों को आरंभ करने का संकेत दिया। स्वामी जी ने अपना ढोल बजाए हुए कीर्तन का आरंभ किया। मंजीरों, याष्टिकाओं और तालियों की ध्वनियां भी योग देने लगी। इस तरह कीर्तन करीब 10 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि एक इंजीनियर ने शीशे के स्टूडियो से निकलकर उसे रोकने को नहीं कहा। ब्रह्मानंद तालियां अधिक जोर से बजा रहा था, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा था। इंजीनियर अपने स्टूडियो में वापस गया, अपने हेडफोन पहना, देखा कि संतुलन ठीक है। जब उसने दूसरी बार कीर्तन आरंभ करने का संकेत दिया, इस बार वह पहले से अच्छा था। पहले तंबूरों की ध्वनि उसकी अनुगंध के साथ सुनाई दी। एक क्षण बाद स्वामी जी अपना ढोल बजाते हुए कीर्तन करने लगे, वंदे हम श्री गुरु। तत्पश्चात सभी वाघ यंत्र एक साथ बज उठे, तंबूरा, हारमोनियम, वाघ यष्टिया, मंजीरे, रूपानों की घंटिया। स्वामी जी अकेले गा रहे थे और सभी वाघ यंत्र उसकी संगत कर रहे थे। इस तरह वहां स्टूडियो में स्वामी जी की आवाज बहुत मधुर थी। उनके शिष्यों में प्रेमोद्रक हो रहा था। वे केवल रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे, वहां सफलता और एक की अनुभूति का राज था। उनके महीनों के परिश्रम की वह सफल संज्ञा थी। कुछ समय तक स्तुतियां अकेले ही गार लेने के बाद प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। इस बीच वाघ यंत्र बजते रहे, तब हरे कृष्ण महामंत्र आरंभ हुआ। विशुद्ध भक्तिवेदांत स्वामी की विशेषज्ञता सर्वत्र साई रही, ठीक वैसे ही जैसे रसोई में या उनके व्याख्यानों में इंजीनियरों ने जो कुछ सुना उसे उन्होंने पसंद किया। यदि कोई गलती नहीं हुई तो यह बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। वाघ यंत्र ठीक से, ढोल ठीक था, गाना ठीक था, सबका सामंजस्य अपरिष्कृत था, किंतु यह एक विशेष रिकॉर्ड था। कुछ हो रहा था, हरे कृष्ण के कीर्तनकारी अपना कार्य कर रहे थे और वे उसे बहुत ठीक कर रहे थे। अलेन कालमैन भावनाओं से भरा था, वहां एक प्रमाणिक ध्वनि का रिकॉर्ड बना रहा था। संभव है कि उसकी अच्छी बिक्री हो। मंत्र की कुछ आवृत्तियां के बाद भक्तों को राहत मालूम होने लगी, मानो वे मंदिर में वापस आ गए हो और रिकॉर्ड में गलतियां करने की बात उन्हें भूल गई। वे कीर्तन करते रहे और उसकी ताल में स्थिरता आने के साथ गति में कुछ तेजी आ गई। हरे शब्द का उच्चारण कभी कभी उच्च स्वर में होता जाता, किंतु समूह गान में किसी प्रकार की भावावेश नाटकीयता नहीं थी। स्वामी जी के मधुर संगीत की केवल सीधी सादी अनुक्रिया थी। 10 मिनट बीत गए, कीर्तन तीव्रतर उच्चतर और तीव्रतर होता गया। स्वामी जी अपने ढोल पर अपना अनोखा कर्तृत्व दिखाते रहे, तब एकाएक सब कुछ रुक गया, केवल हारमोनियम का गूंज बना रहा। अलेन स्टूडियो से बाहर आया और बोला, स्वामी जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्या आप कार्यक्रम जारी रखेंगे और अपना भाषण अभी आरंभ कर देंगे या आप बहुत थक गए हैं? विनम्र चिंता के साथ निस्तेज और सत्तेदार चेहरे वाले अलेन कालमैन ने अपने मोटे चश्मे से स्वामी जी को देखा। स्वामी जी थके लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं थका हूं। तब भक्तगण स्वामी जी का पहले से तैयार भाषण सुनने के लिए स्टूडियो में बैठ गए। संवेदना से पूर्ण भक्तों ने सोचा कि बलाघात के बावजूद स्वामी जी का उच्चारण बहुत स्पष्ट था और वे अपने आलेख के कुशल वक्ता की तरह पढ़ रहे थे, जैसे कि रिकॉर्ड एल्बम के आवरण पर बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन द्वारा उत्पन्न दिव्य स्पंदन हमारी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने की उदात्त पद्धति है। भाषा दार्शनिक थी और उस तरह के लोगों जो कीर्तन समाप्त होते ही स्वामी जी के एक भी शब्द बोलने के पूर्व ही मंदिर से बाहर चले जाते थे। रिकॉर्ड के एल्बम पर अंकित यह भाषण पसंद करने वाले नहीं थे। स्वामी जी पढ़ते गए, जीवित चिन्मय प्राणियों के रूप हम मूलतः कृष्ण चेतन जीव है, किंतु अनादि काल से पदार्थ के साथ हमारे संसर्ग के कारण हमारी चेतना भौतिक परिवेश के संप्रीति दूषित हो गई है। भक्तगण विनम्रता पूर्वक अपने सद्गुरु के वचनों को सुनते रहे और इस बीच यह अनुमान लगाने का प्रयत्न करते रहे कि इस भाषण का श्रोता मंडली पर क्या प्रभाव होगा। निश्चय ही कुछ लोग निश्चिन्मय प्रकृति शब्द सुनते ही रेकॉर्ड बंद कर देंगे। स्वामी जी ने वांछन जारी रखा। वे समझा रहे थे कि कीर्तन मनुष्य को एक इंद्रिय मानसिक और बौद्धिक क्षेत्रों से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देगा। प्रभुपाद आगे पढ़ते रहे, हम लोगों ने इसे व्यवहार में देखा है। कीर्तन में एक बालक भी भाग ले सकता है या कुत्ता भी इसमें शामिल हो सकता है, किंतु कीर्तन के एक विशुद्ध भक्त के मुख से सुना जाना चाहिए। और वे अंत तक पढ़ते गए। अतः इस युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार का इससे बढ़कर कोई प्रभावशाली साधन नहीं है कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे यह मंत्र का जाप करें। अलेन पुनः स्टूडियो से भागता हुआ प्रभुपाद के पास आया। उसने कहा यह बहुत सुंदर था। उसने कहा कि उन लोगों ने भाषण की किंचित प्रतिध्वनि रेकॉर्ड कर ली है जिससे भाषण श्रोता के लिए विशिष्ट बन जाए। चश्मे को अंगुलियों से पीछे हटाते हुए उसने कहा जब भाषण गली और लगभग 10 मिनट और बचे हैं, क्या आप पुनः कीर्तन करना पसंद करेंगे अथवा क्या अब बहुत देर हो चुकी है। प्रभुपाद मुस्कुराए, नहीं बहुत देर नहीं हुई है। वे अपने सद्गुरु की स्तुतियों का गान करेंगे। प्रभुपाद के शिष्य स्टूडियो के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने सद्गुरु और इंजीनियरों के प्रभावी कार्यकलापों को शिष्य की पिछले ओर से देखते रहे और प्रभुपाद ने अपना गायन आरंभ किया। हारमोनियम की गूंज फिर सुनाई देने लगी। उसके बाद तंबूरे और ढोल बजे, लेकिन पहले से लय का समूह बहुत कम था। वे गाते रहे बिना पूर्ण रिकॉर्डिंग। और तब उन्होंने ढोल के उच्च वादन और हारमोनियम के क्षीण होते स्वर के मध्यम अपना गायन समाप्त किया। उस संध्या के कार्यक्रम का भी तभी समापन हुआ। अलेन पुनः बाहर आया और स्वामी जी को इतने धैर्यवान और सफल स्टूडियो संगीतज्ञ होने के लिए धन्यवाद दिया। प्रभुपाद अब भी बैठे थे। उन्होंने स्वीकार किया, अब हम लोग थक गए हैं। एक-एक स्टूडियो के लाउंड स्पीकर की यंत्र पर हरे कृष्ण कीर्तन का पूरी प्रतिध्वनि के साथ प्रतिश्रवण होने लगा। जब प्रभुपाद ने कीर्तन का सफल रिकॉर्डिंग सुना तो वे प्रसन्न हो गए और उठकर नाचने लगे। वे भावातिरेक में नृत्य रत महाप्रभु चैतन्य की शैली में आगे पीछे दोलायमान होते हुए और कटी प्रदेश को किंचित झुकाते हुए नृत्य में लीन हो गए। निर्धारित कार्यक्रम समाप्त हो सका। अब स्वामी जी अपनी स्वतः स्फूर्त भावनाओं से उस सायंकाल का सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे नृत्य करने लगे, उनके अर्ध सुषुप्त शिष्य चौंक उठे और खड़े होकर उनकी शैली में वे भी नृत्य करने लगे। और शीशे के पीछे रिकॉर्डिंग कक्ष में इंजीनियर भी अपने हाथ उठाकर नृत्य गायन करने लगे। बर्फ जैसी ठंडी मैनहट्टन की उस संध्या में प्रभुपाद स्टूडियो से विदा लेकर जा रहे थे। उन्होंने श्रीमान कालमैन से कहा जब आपने अपना सर्वोत्तम रिकॉर्ड बनाया है। स्वामी जी वॉक्सवैगन बस की अगली सीट पर बैठ गए और हरे कृष्ण कीर्तनकारी अपने वाघयंत्र के साथ गाड़ी के पिछले भाग में बैठ गए और रूपानुग ने उन लोगों को लोअर ईस्ट साइड स्थित उनके घर पहुंचा दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभुपाद नहीं उठे। वे क्लांत थे। कीर्तनानंद जो व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहा था चिंताकुल हो गया जब स्वामी जी ने उनसे अपने हृदय की गति की विचलित और उठ सकने में असमर्थता के बारे में बताया। पहली बार यह बात स्पष्ट हुई कि वे बहुत अधिक श्रम कर रहे थे। कीर्तनानंद को पिछले शिशिर और ग्रीष्म की याद आई, जब स्वामी जी घंटों कीर्तन के लिए उन्हें पार्क में ले जाया करते थे या शाम को देर तक उनके साथ कार्यक्रम में रखा करते थे। ये सारे कार्यक्रम उनके लिए प्रतिदिन की बात थी, बात हो गई थी। किंतु कीर्तनानंद को लगा कि अब स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने का कारण था। इन्हें दोपहर के भोजन की इच्छा नहीं थी, नहीं हुई। यद्यपि तीसरे पहर में उन्हें भूख लग गई और वे अपने नित्य के कार्यों में व्यस्त हो गए। उसी दिन सैन फ्रांसिस्को से मुकुंद का पत्र आया। मुकुंद और जानकी अपने विवाह के कुछ समय बाद ही वेस्ट कोस्ट चले गए थे। मुकुंद ने स्वामी जी को बताया था कि वह भारतीय संगीत का अध्ययन करने के लिए भारत जाना चाहता था, लेकिन दक्षिण एरोगेन में कुछ सप्ताह बिताने के बाद वह सैन फ्रांसिस्को जाकर वही ठहर गया। अब उसके मन में एक और सुंदर विचार उठा था। वह किराए पर स्थान लेना चाहता था और प्रभुपाद को आमंत्रित करना चाहता था कि वे वहां आए और हेट एसबरी डिस्ट्रिक्ट में उसी प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ करें जैसा वे लोअर ईस्ट साइड में कर रहे थे। उसने कहा कि वहां कृष्ण भावनामृत की संभावनाएं बहुत अच्छी है। यह जानकर प्रभुपाद अपनी विस्तारशील योजनाओं का ब्यौरा शिष्यों को देने लगे। उन लोगों को चाहिए कि वे न केवल सैन फ्रांसिस्को में वरन एक एक करके सारे विश्व में मंदिर स्थापित करें। यहाँ तक कि रूस और चीन में भी उन्हें भगवत गीता को भी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करना चाहिए और उनकी योजना श्रीमद् भागवत के सभी खंडों को अंग्रेजी में अनुवाद करने और उसके बाद भक्तों का एक दल लेकर भारत वापस जाने की थी। भक्तों ने प्रभुपाद की ये बात तो सुनी और वे आश्चर्यचकित हो गए। कीर्तनानंद को सवेरे प्रभुपाद के खराब स्वास्थ्य के जो चिंताजनक लक्षण दिखाई दिए थे और जो विचार उसके मन में उठे थे वे सब भूलने लगे। उसने सोचा, यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं। अग्यारह नवंबर को जब प्रभुपाद सवेरे की कक्षा लेने के लिए नीचे आए तो अपने साथ वे सामान्य भूरे रंग के स्थान पर लाल रंग का बड़ा सा ग्रंथ लिए थे, किंतु किसी ने इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया। सदैव की तरह उन्होंने अपने गुरु महाराज के प्रति कोमल स्वर में स्रोत गायन आरंभ किया। उनके बोंगों से निकलने वाली क्षीण लय उनका साथ दे रही थी। पड़ोस में लोग अब भी सोए थे। मौसम ठंडा था, किंतु भाप देने वाली मशीनों में स्टोर फ्रंट में गर्म कर रखा था। अब घर के बाहर कीर्तन का आयोजन नहीं होना था। मैनहट्टन में ग्रीष्म ऋतु में नगर खूब खुला रहता है, किंतु झाड़े में कसदर बंद रहता है। इसका तात्पर्य यह था कि शाम की कक्षाओं के समय दरवाजे के बाहर शोरगुल करने वाले बच्चे नहीं होंगे। यद्यपि प्रातकालीन कक्षाएं सदैव शांत रहती थी ग्रीष्म ऋतु में भी, किंतु अब शीत ऋतु के निकट होने से स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या केवल प्रतिबद्ध और कर्तव्यनिष्ठ समुदाय तक सीमित हो जाएगी। सेकंड एवेन्यू में इस्कॉन का आरंभ हुए 4 महीने बीत गए थे। स्वामी जी ने अब तक 3 अलग अलग दीक्षा समारोह किए थे और उनमें 19 भक्तों को दीक्षित किया था। उनमें से अधिकतर दत्तचित हो गए थे। यद्यपि कुछ अब भी कभी कभी आने वाले अभ्यागत की तरह थे। अब इन प्रातकालीन कक्षाओं में स्वामी जी उन्हें विस्तार से बताना चाहते थे कि भक्त कैसे बना जा सकता है। 20 मिनट तक वे हरे कृष्ण कीर्तन की अगुवाई करते रहे, शिष्यों का सावधान करते हुए कि वे मंद स्वर में अनुसरण करें ताकि कोई पड़ोसी छत से पानी न डाल दे। पहले ये प्रॉब्लम था, सुना है ऐसे। यद्यपि कुछ समय से किसी ने ऐसा नहीं किया था, प्रभुपाद किराएदारों से हमेशा सहयोग करने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी कभी कोई किराएदार उनके विरुद्ध आवेदन पत्र दे देता था जिसका कोई विशेष महत्व नहीं होता था। कभी कभी प्रभुपाद किराएदारों के कूड़े का कबाड़ की सफाई में मकान मालिक श्रीमान सूटे की सहायता कर देते थे। मकान मालिक के अन्य कामों में भी वे हाथ बांट देते थे। मकान मालिक श्रीमान सूटे मोटी तौंद वाले पॉलिश शरणार्थी थे जो पहली मंजिल के एक अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। श्रीमान सूटे स्वामी जी की अवस्था और विद्वता के कारण उनका आदर करते थे और स्वामी जी उनके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण थे। श्रीमान सूटे जब भी प्रभुपाद के अपार्टमेंट में आते तो वे अपने जूते कभी न उतारते और प्रभुपाद हमेशा यही कहते, ठीक है, सब ठीक है। और एक बार जब प्रभुपाद के अपार्टमेंट में नल ठीक काम नहीं कर रहा था तब वे नीचे गए थे और उन्होंने श्रीमान सूटे के अपार्टमेंट में स्नान किया था, किंतु स्वामी जी श्रीमान सूटे को मूर्ख भौतिकतावादी का एक पक्का उदाहरण मानते थे, क्योंकि यद्यपि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई इस इमारत को खरीदने में लगा दी थी फिर भी उन्हें इतना कड़ा परिश्रम करना पड़ता था कि प्रभुपाद कहते थे कि अपने जीवन की सारी कमाई से यह जीर्ण शीर्ण इमारत खरीद कर वे मूर्ख बन गए हैं, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि इसके रख खराब के लिए उन्हें गधे की तरह काम करना पड़ता था। ये थोड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए, खुद के लिए। हम देखते हैं, हम विचार करते हैं कि यहाँ से बोरीवली जाए, बोरीवली से अंधेरी जाए, तो यहाँ प्रभु सत्स्वरूप महाराज बताते हैं कि सारी कमाई से यह जीर्ण शीर्ण इमारत खरीद कर वे मूर्ख बन गए हैं। ये हमारा विचार ऐसा है कि मूर्ख, हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके रख रखाव के लिए उन्हें गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती थी। प्रभुपाद कहते थे भौतिकवादी इसी तरह काम में लगे रहते हैं। श्रीमान सूटे यद्यपि स्वामी जी को आदर की दृष्टि से देखते थे, यद्यपि वे भक्तों को पसंद नहीं करते थे, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो मानो वे तुम्हारे पिता है। अतः वे ऐसा ही करने लगे। जब भी उन्हें श्रीमान सूटे से काम पड़ता है तो वे उनके पास यह कहते हुए जाते कि हम आपके पुत्र हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत की, शील प्रभुपाद की।